अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलक जो निवारण करने वाला है, वह सप्तशती स्तोत्र की संपूर्ण रूप से उन्हें जानना आवश्यक है और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याणकारक होता है, उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें ही अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषध तथा अन्य किसी साधन उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनकी उच्चाटन आदि समस्त अविचारिक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी, जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर के पास आए और जिज्ञासुओं को समझाए, यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र ही सर्व श्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। भगवान भोलेनाथ जी सभी देवताओं को समझाते हुए कहते हैं, तदनंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया है। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। अतः भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती को ही श्रेष्ठता निर्णय किया है, उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप अनुष्ठान कर ले तो वह भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्थदशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित्त होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंधक रूप कीलक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, जो पूर्वोक्त रीति से निष्कीलन करके इस सप्तशती स्तोत्र का प्रतिपादन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का पार्षद हो जाता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता है, वह अपमृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंतर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः कीलन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती पाठ आरंभ करें, जो ऐसा नहीं करता उसे उसका पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए कीलक स्तोत्र और निष्कीलन का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र पाठ आरंभ करते ही स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टिगोचर होता है वह सब देवी के प्रसाद का ही फल है। अतः इस कल्याणमयी स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धियां होती है। अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ अवश्य आरंभ करना चाहिए। जिनके प्रसाद से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति और शत्रुनाश तथा परम मोच और सिद्धियां भी प्राप्त होती है, इन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्यों को निश्चित प्रतिदिन गाना चाहिए। ओम नमश्चंडिकायै मार्कण्डेय उवाच, ओम विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षुषे श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्थ धारिणे सर्वमेतत् जानी यान मंत्राणाम अभिकीलकम् स्वपिछेमं वाप्नोति सततं जप्य तत्परः सिद्ध्यंच नादीनि वस्तून सकलान्यपि एतेन स्तुवतम देवी स्त्रोत मात्रेण सिद्ध्यति न मंत्र नौषधम तत्र न किंचिदपि विद्यते बिना जापेन सिद्ध्यन्ति सर्वोच्चाटनादिकम् समाग्रान्यपि सिद्ध्यन्ति लोकशंकान्य मम हरः कृत्तानि मंत्रयामास सर्वमेव इदं शुभम् स्तोत्रं वै चण्डिकास्तु तच्च गुप्तं चकार्षः समाप्तिर्न च पुण्यस्य ताम यथा मंत्रयन्त्रणा स्वपि क्षेमं वाप्नोति सर्वमेवं न संशयः कृष्णायां वा चतुर्दृष्टभ्यामष्टभ्यां वा समाहिता ददाति प्रतिग्रहणादि नैनचेषा प्रसीदति इत्थं रूपेण कीलेन महादेवेन कीलितम् योनिष्कीलं वैधायनं नित्यं जपति संस्फुटं ससिद्धः सा ग्रहसोऽपि गंधर्वो जायते नरः न चैवाप्यटस्तस्य भयं क्वापि हि जायते नापमृत्युवशं यति मृतो मोक्षमाप्नुयात् ज्ञातः ज्ञात्वा प्रारम्भ कुर्वीत न कुर्वाणो विनश्यति ततो ज्ञातैव सम्पन्नमिदं प्रारम्भते बुद्धेः सौभाग्यादि च यत्कश्चिद् दृश्यते ललनाजने तत्सर्वं तत्प्रसादेन तेन जाप्यमिदं शुभम् सनेयस्तु जाप्यमाने अस्मिन् स्तोत्रे संपत्तिरोचकः भवत्येव समाग्रपि ततः प्रारम्भमेव तत्।